शुरू में मति ज्ञान का स्वरूप बताया, उसको छोड़कर हम शुद्ध ज्ञान का स्वरूप से शुरू करें, क्योंकि उसमें जो गणित वगैरह है जरा समझ नहीं सकते, ठीक है ना। तो 450 पेज पर है, 315 नंबर की बात। यहाँ प्रथम ही शुद्ध ज्ञान का सामान्य लक्षण कहे, पहले उसकी डेफिनेशन क्या है वो बताए। अच्छा अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक वेदनी को दिखा देते हैं। लोगानम संघमिदा अणक्करप्पे हवन्ति छठाणा वेरुव छठवक्कपमानम रूणम अक्षरंगम। लोकानाम असंघमितानि अनक्षरात्मके भवन्ति षष्ठानानि विरूप षष्ठ वर्ग प्रमाणम रूपोनम अक्षरगम। यहाँ अक्षर श्रुत ज्ञान, अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के कितने भेद हैं और अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के कितने भेद हैं उसने कहा। तो लोकानाम असंग यानी असंख्यात लोक प्रमाण इसके षष्ठान बुद्धि के स्थान जो है वो अनक्षरात्मक में होते हैं और अक्षरात्मक कितने हैं तो द्विरूप षष्ठ वर्ग प्रमाण। दूसरे के अनुवाद की क्रमश ही हानि बुद्धि करी संयुक्त है। तो क्या कहते हैं अब इसके अनुभव यानी वचनी की जो शक्ति इसकी बात कर रहे हैं ज्ञान आवरण का। तो उसमें शुद्ध ज्ञान आवरण का द्रव्य यानी परमाणु कितने हैं शुद्ध ज्ञान आवरण के? तो शुद्ध राशि के अनंत के भाग यानी अनंत ही। तो द्रव्य के अनुभाग की क्रम से हानि वृद्धि करी संयुक्त है यानी ये जो परमाणु है उसमें जो अनुभाग है वो कम ज्यादा होता है। ज्ञान का आवरण करने की जो शक्ति है वो कम ज्यादा होती है। बहुरी नाना गुणहानि स्पर्धक परगना रूप भेज लिए है इस द्रव्य विषय सर्वतः थोड़ा उदय अनुभाग जाकर क्षीण हुआ ऐसा जो सर्वगाती स्पर्धक तो उसके अपने ये जो संभवते 6012 बार क्षुद्र भव तीन विषय भ्रमण करी अंत का लब्ध्य पर्याप्त रूप क्षुद्र भव विषय तीन वक्रता लिए जो विग्रह गति ता करी जन्म धरया हुई ताके विग्रह गति में पहली वक्रता संबंधी समय विषय तिष्ठता जीव ही कही सर्वतः जघन्य पर्याय नामास्त ज्ञान हो है। तो ये बात केवली के बिना कौन जानेगा। एक तो ये जो बार 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 उसी पर्याय में जन्म रहा है लगातार की बात, तो उसमें 6012वें बार वो जन्म लेने वाला है और वो भी सीधी गति से जाएगा तो उसकी बात नहीं, उसमें थोड़ा ज्यादा ज्ञान होगा। ये तो तीन बार मोड़ लेके जाने वाला जीव जो है, तो उसमें जो पहली वक्रता के पहले वाला यानी पहले समय संबंधी तीन वक्रता है ना यानी चार समय है, तो पहले समय संबंधी उसको सबसे जघन्य शुद्ध ज्ञान होगा ये पर्याय नाम का ज्ञान। बहुरी देखो फिर से हमने एक एक के 6012 लगातार जो क्षुद्र भव है वो संभव थे, तो उसमें उसका ये अंतिम भव यानी 6011 बार वो जन्म लेके मरा।
यहाँ सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्त निगोदीय जीव की ही बात कर रहे हैं क्योंकि उसी को सबसे जघन्य ज्ञान है, तो वो उसमें से कौन सा जीव लेने का कि जो जीव एक बार जन्मा दो बार जन्मा ऐसा करते करते 6011 बार जन्मा और अभी 12वें बार जन्म रहे, तो 12वें बार जन्मने वाला भी तीन मोड़ के साथ ही जन्मने वाले की बात लेने की। अब आगे
ये अंतर्मुख की बात कर रही है ना, एक अंतर्मुख में एक इंद्रियों के भाव हमने 66132 देखे, उस संबंधी निगोदिया के कितने हो गए, तो 6012 हो गए, लगातार उसमें जन्मेगा मरेगा तो 6012 हुए। अब उसमें 6011 बार तो जन्म लेके मर चुका, अभी 6012 वो जन्म लेने वाला है, वहाँ भी सीधी एक समय में वाली गति से जाएगा, तो उसको सबसे जघन्य ज्ञान नहीं है। सबसे जघन्य ज्ञान कहाँ पॉसिबल है उसकी चर्चा है। अब तीन मोड़ लेता है उसका अर्थ ही क्या है कि वो लोकाकाश के नीचे के ऐसे एंड होगा उससे बीच में आना पड़ता है, फिर ऊपर कहीं जाएगा और फिर बाद एक दो और फिर अंदर कहीं ऐसा जाने का है, तो ये तीन मोड़ लेने पड़ते हैं। अभी मध्यलोक में ही जन्मने वाला है तो उसको इतने मोड़ नहीं होंगे, एक ही लेवल पर कहीं पर जाना है उसको तो उसको एक मोड़ से काम चलता है। अभी एक लेवल पर होगा तो अभी ये होगा कोई भी जैसे क्यूबिक होगा हो, कहीं भी क्यूब में जाना है एक एंड से कहीं अन्य जगह, तो एक तो सीधा जाएगा फिर जहाँ ऊपर है वहाँ उस सतह पर आएगा और फिर वो यानी दो मोड़ में काम हो जाता है। लोकाकाश तो क्यूबिक नहीं है अनिवन है, तो ये यहाँ से अगर यानी नीचे के लेवल एंड से ऊपर जाना है कहीं यहाँ उसको, तो अलोकाकाश में तो वो ट्रैवल नहीं कर सकता है, लोकाकाश में ही उसको कहीं जाना है, तो इसलिए वो सेंटर में आएगा फिर ऊपर जाएगा फिर इस लेवल पर जाएगा और फिर और अंदर जाएगा दक्षिणोत्तर जहाँ भी होगा, इसलिए उसको तीन मोड लेना ही पड़ता है। ऐसा जो जीव है तो अभी ये जो पहला समय का ये है, ये इस मोड़ के पहले वाले जो समय है ना प्रथम मोड़ संबंधित समय, ये उसका पहला समय है, यहाँ पर उसको सबसे जघन्य क्या है। बहुरी तिथि के स्पर्शन इंद्रिय संबंधी जघन्य मति ज्ञान हुए, यानी ये जघन्य शुद्ध ज्ञान की बात की हमने, पर्याय नाम का तो शुद्ध ज्ञान का भेद है, जिसको पर्याय नाम का सबसे जघन्य शुद्ध ज्ञान है उसी को सबसे जघन्य मति ज्ञान भी है। अब ये एक इंद्रियों की कौन सा मति ज्ञान होगा, स्पर्शन इंद्रिय संबंधी सभी एक इंद्रियों को है ना, तो उसमें भी जघन्य में जघन्य जो उसको ज्ञान है वो वो उस जीव को है, यानी मति ज्ञान भी उसका जगन्य है और शुद्ध ज्ञान भी जगन्य है। बहुरी चीज ही कही, अचक्षु दर्शनावरण के क्षोभ क्षमते उपजा जघन्य अचक्षु दर्शन भी हो है। अब सबसे कम जघन्य अचक्षु दर्शन भी उसी जीव को है। सो यहाँ बहुत क्षुद्र भव रूप पर्याय के धरने से उत्पन्न भया बहुत संकलेश ताके बदने करी आवरण का अति तीव्र अनुभाव का उदय हो। क्या भाव, बार बार निगोद में निगोद में निगोद में उत्पन्न हो रहा है तो निकोदिया जीवों के तो संकलेश परिणाम है, और बार बार उसी भव में उत्पन्न होकर मरना तो उसकी संकलेश की अधिकता हो जाती है। तो जहां जितना संकलेश अधिक उतना आवरण अधिक, तो इसलिए उसके मैक्सिमम आवरण है, आवरण का उदय। इसलिए उसके जो आवरण का अधिक अनुभाग का उदय हो रहा है, क्योंकि हमें जो फल मिलता है वो तो अनुभाग उदय से मिलता है। कितने प्रदेश उदय में आया उससे तो कोई लेना देना नहीं है, कितने काल के बाद उदय आया उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उदय तो एक ही समय का निषेक होगा ना। तो उदय में हम क्या किसको लेते हैं, अनुभाग के उदय को लेते। इसलिए इन्होंने स्पष्ट किया अनुभाग के उदय, ये ख्याल में अनुभाग उदय क्यों लिया। कितने नंबर ऑफ परमाणु उदय में आते उससे कुछ लेना देना नहीं, यदि वही परमाणु तीव्र अनुभाग वाले हो गए तो उदय अधिक है, वही मंद होकर उदय में आए तो उसका फल कम है। जैसे ज्ञानावरण के पास साते क्षुद्र भवनी का अंत क्षुद्र भवनी विषय पर्याय ज्ञान कहा है। बहुरी द्वितीय आदि समयनी विषय ज्ञान बत्ता संभवे है, यानी सेकंड समय में जो अभी विग्रह गति में ही है वहां उसका ज्ञान अधिक हो सकता है। ताते तीनी वक्र विषय, प्रथम तीनी वक्र विषय यानी तीन वक्र है ना वहाँ तीन मोड़, प्रथम वक्र का समय ही विषय पर्याय ज्ञान कहा है, यानी वहां पर ही वो संभवता है। आगे सुहमणि गोद पज्जत्तयक्षजादस्य पड़म समयम् मे फासिन्दिय गदिपूवम् सुदनानम् लद्धि अकरयम् सूक्ष्म निगोद अपर्याप्तकस्य जातस्य प्रथम समये स्पर्शनेन्द्रियम् मतिपूर्वम् श्रुतज्ञानम् लब्ध्यक्षरकम्। मैंने सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्तक जीव के उपजने का पहला समय विषय सर्वते जघन्य स्पर्शन इंद्रिय संबंधी मति ज्ञान पूर्वक लब्धि अक्षर है दूसरा नाम जा का ऐसा पर्याय ज्ञान हो है। यानी पर्याय ज्ञान कहो या लब्धि अक्षर ज्ञान कहो एक ही बात, लब्धि अक्षर भी कहते हैं, अक्षर ज्ञान अलग बात है और ये इसी को लब्धि अक्षर भी कहते हैं। तो हमने देखा था कि श्रुत ज्ञान हमेशा मति ज्ञान पूर्वक ही होता है, तो वहां स्पर्शन संबंधी जो जघन्य मति ज्ञान पूर्वक ये जघन्य श्रुत ज्ञान होता है। लब्धि कहिए श्रुत ज्ञानावरण का क्षोभम व जानन शक्ति ताकरी अक्षरम कहिए अविनाशी, सो ऐसा पर्याय ज्ञान ही है। यानी ज्ञानिन जानन शक्ति से वो यानी वहां से वो खिसकता नहीं, अक्षर है अविनाशी है, यानी उतनी जानन क्रिया तो उसकी होगी ही, वो जानन क्रिया से कभी रहित नहीं होता, अक्षर नहीं होता ने रहित नहीं होता, इसलिए उसको लब्धि अक्षर का। सो ऐसा पर्याय ज्ञान ही है जाते इतना क्षोभम सदा काल विद्यमान रहे है। आगे दस गाथा नहीं करी पर्याय समास ज्ञान को। अब ये पर्याय समास ज्ञान में कैसी कैसी वृद्धि हो सकती है,